मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 13 अप्रैल 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अपने दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं शुभम सेन, आप हिंगेश्वर छत्तीसगढ़ से हैं, और कृष्ण मौर्य, आप आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। तो शुभम और कृष्ण, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं आप सबकी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बधाई देता हूं अपने सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट सूर्यकांत कुंभकार को, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, इस बात के लिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के पीएससी के एग्जामिनेशन का प्री क्वालिफाई किया है। तो सूर्यकांत, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां और हम सब की तरफ से आगे की सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और ईश्वर से प्रार्थना भी। दोस्तों, आइए अब हम न्यूज एनालिसिस की बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि कल की न्यूज में ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि हम उस पर बहुत ज्यादा बातें कर सकें, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ हो ही ना कुछ तो निकल ही जाता है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें करके और फिर ठोस बात पर आऊंगा। एक न्यूज आपने सुनी कि इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे इस इश्यू के ऊपर कि केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को, जो अभी एक सांविधिक संस्था है, मतलब जिसे एक्ट के तहत गठित किया गया है, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक उन्होंने विधेयक पेश किया था, लेकिन वो राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया है। अब उस पर विचार करने के लिए एक समिति को सौंप दिया गया है। तो यानी कि संवैधानिक दर्जा मिलने में उस थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ये खबर आपने पढ़ी। अभी हमारे सामने इसको लेकर के कुछ विशेष बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, देखिए क्या होता है। हाँ, एक एंगल जरूर बनता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर में मेन्स के, तो उसमें ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि इससे क्या फायदा होगा, या सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, या सांविधिक संस्था और संवैधानिक संस्थाओं में क्या फर्क होता है। हो सकता है कि इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि प्री में भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यही आ जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग अभी संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, या कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा पारित संस्था है, या सामान्य संस्था है, इस तरह का भी कोई प्रश्न आ जाए। या हो सकता है कि इस तरह का कोई प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए कि निम्न संस्थाओं में से किस संस्था का दर्जा संवैधानिक संस्था का नहीं है, और उसमें फिर एक पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम दे दिया जाए। तो इस तरह की संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, और इसको लेकर के मैं आज आपको एक प्रेस क्लिपिंग्स भी इंडियन एक्सप्रेस की प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे आपको थोड़ी सी ये जानकारी मिल सकेगी कि इनफैक्ट ये सारी चीजें होती क्या हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाता है, क्यों इसका विरोध होता है, क्यों इसका समर्थन होता है, तो वो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं जो आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं वो इंग्लिश में है फ्रेंड्स, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका हिंदी भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। ये पहली खबर थी। जो दूसरी खबर थी दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के आप देख रहे हैं कि काफी समय से बातचीत चल रही है। अभी मुझे नहीं लगता है कि सिविल सर्विस के लिहाज से कोई प्रश्न इससे बन रहा है, लेकिन यदि कभी ऐसा लगा या हम उसी स्टेज पर पहुंचे तो मैं डेफिनेटली फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो तीसरी खबर है मित्रों, उस पर मैं आज थोड़े विस्तार से बात करना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हालांकि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मतलब मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा कि पता नहीं वो इस न्यूज की अहमियत को कितना पकड़ पाए होंगे, हालांकि न्यूज उन्होंने सुनी होगी, लेकिन उसकी अहमियत कितनी है शायद पकड़ने वालों की संख्या बहुत कम होगी। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि जो हमारा ध्यान होता है, और स्वाभाविक भी है, ये कोई हमारी गलती भी नहीं है, कि वो हमारे सिलेबस पर होता है। अब सिलेबस एक तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, दूसरा यह है कि अगर वो सिलेबस जनरल स्टडीज का सिलेबस है तो जनरल स्टडीज के नाम पर तो बहुत लिबर्टी भी मिल जाती है। ये बात अलग है कि यूपीएससी उतनी ज्यादा लिबर्टी लेती नहीं है, फिर भी लिबर्टी तो मिल जाती है, और कम से कम इस बात की तो लिबर्टी मिल ही जाती है कि वो उसी सिलेबस में जो मेंशन किया गया है उस टॉपिक से इनडायरेक्ट जो दूसरे जुड़े हुए हैं उनके बारे में वो पूछ ले। अब मैं आपको उस टॉपिक का नाम बता देता हूं जो जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, जो न्यूज से संबंधित है। वो ये है कि आपने खबर सुनी कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के जो 11 उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसे हम कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, उनको लिस्टिंग करने का फैसला किया है। ये न्यूज आपने सुनी, और फिर उसमें आपने ये भी सुना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं और इसके बारे में मैं भी आपको एनालाइज भी करूंगा, फिर आपने ये भी सुना कि इसमें से 20%, इस पर 100% गवर्नमेंट का भी अधिकार है, 20% इसका विनिवेश कर देगी या इसके शेयरों की बिक्री कर देगी, और तीसरा पॉइंट आपने ये भी सुना कि जो शेयरों की बिक्री की जाएगी उसमें से कुछ शेयर्स इसमें जो ऑलरेडी काम करने वाले लोग हैं, जो इसके एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वो आरक्षित करेगी। ये तीन खबरें आपने सुनी। एक चीज आपने और भी शुरू में ही इसकी जो लाइन थी वो थी कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह निर्णय लिया है, राइट। तो ये चार चीजें हो गई। देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूं, कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति नंबर वन, नंबर दो सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों की लिस्टिंग शब्द, तीसरा है कि इसके 25% शेयर्स की बिक्री होगी, और चौथा है कि ये इसके कुछ शेयर्स इसके जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रिजर्व रखे जाएंगे। ये चार खबरें आपने सुनी हैं। अब आप देखिए कि अगर सामान्य तौर पर आप सतर्क नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं या उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो आपको एक सिंपल सी खबर लगेगी, मालूम पड़ेगी और बात खत्म हो जाएगी। वैसे भी अगर आप आज के अखबार उठा करके देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको फ्रंट पेज पे रखा गया है, बहुत से अखबारों ने तो 5-7 लाइन में ही निपटा दिया है, कुछ ने थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है। हाँ, अगर आप इकोनॉमी के अखबार पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ आपके इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, तो उसमें थोड़े से आपको विस्तार से जगह मिल जाएगी। तो अब स्टूडेंट को ये पकड़ना स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सच में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट है। अब इसके इम्पोर्टेंट को आप अपने लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब ये महत्वपूर्ण तो हो गया, ठीक है, तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई है इससे आपका काम चल जाएगा? आप देखेंगे कि न तो प्री में काम चलेगा न मेंस में काम चलेगा। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को आप देखिए जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, तो आपको बहुत साफ तौर पर यह बात समझ में आ जाएगी कि इनसे जुड़े जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल इकोनॉमी के नहीं, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के नहीं, सैद्धांतिक नहीं होते। यूपीएससी ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट को इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की व्यावहारिक जानकारी है कि नहीं है, यानी कि ये जो न्यूज आपने सुनी है ये सुनने से बात नहीं बनेगी, रट लेने से भी बात नहीं बनेगी, इसको समझने से बात बनेगी। तो मित्रों, अब मैं थोड़े से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मैं कितना सफल हो पाता हूं। और इनफैक्ट सच पूछिए तो मैं एक टॉपिक लेकर के आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मेरा यह समझाना केवल इसी टॉपिक तक सीमित है। मैं चाहूंगा कि इससे आप समझने के पैटर्न को पकड़े, साथ ही साथ किसी भी टॉपिक पर तैयारी कैसे की जाती है आप उस पैटर्न को भी पकड़े, क्योंकि देखिए जब तक पैटर्न पकड़ में नहीं आएगा तो ठीक है, करंट अफेयर्स की कुछ चीजों को लेकर के तो मैं आपको इतने विस्तार से बता देता हूं, लेकिन न तो मैं हर चीज को बता पाता हूं क्योंकि वो मेरे लिए संभव नहीं है, और फिर जो चीज करंट अफेयर्स में नहीं है आपको तो उनको भी समझना है, तो उनको तो मैं बता नहीं रहा हूं, तो फिर आपकी तैयारी तो वैसे ही आधी अधूरी रह जाएगी। और अगर तैयारी अधूरी रही तो आप ये मत समझिएगा कि सफलता आधी अधूरी मिलेगी, सफलता 100% नहीं मिलेगी, तैयारी आधी अधूरी से सफलता उसी के अनुपात में नहीं होती है, वो जीरो होती है, या तो जीरो होती है या फिर होती है 100% होती है, अब सफलता के रेंज में चाहे जो भी सफलता हो जाए। तो मित्रों आइए अब मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूं। आपने आर्थिक मामलों की समिति शब्द सुना, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भई ये कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति क्या हुई, ठीक। अब ना तो उसके ऊपर अखबार लिखेगा, आप यहां तक के एडिटोरियल कमेंट भी इस पर सुनेंगे या एडिटोरियल आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये समझाया नहीं जाएगा कि आर्थिक मामलों की समिति कौन सी बला है, क्या है, क्या चीज है, नॉट एट ऑल। अब आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि आपको चाहिए कि आप किताब उठाएं जो इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट से संबंधित किताब है, उसमें कैबिनेट का चैप्टर निकालें, क्योंकि कैबिनेट है तो कैबिनेट के चैप्टर में मिलेगा, और फिर देखिए कि क्या उस चैप्टर में कोई सब टाइटल है कि कैबिनेट की भी कोई समितियां हैं, आपको मिल जाएगा। और जब आप कैबिनेट की समितियों को उठा करके देखेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको साफ अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि कैबिनेट की समितियां क्या होती हैं, एकदम क्लियर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 2015 के प्री एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अब आप देखिए कि उसको जब आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, और एक बार आपके दिमाग में क्लियर हो गया तो फिर हमेशा के लिए क्लियर हो गया, क्योंकि यहां कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत फार्मूला नहीं है जिसको आपको याद रखना है। समझ में आ गई, बात हो गई। जब भी फिर आप कभी भी इस तरह की न्यूज सुनेंगे तो कभी आएगा कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की संबंधी समिति ने निर्णय लिया है, तो कभी आएगा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निर्णय लिया है, कभी सुनेंगे कि संसदीय मामलों संबंधी समिति ने निर्णय लिया है। तो आपको अब तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बार समितियों के बारे में समझ लिया है। तो दोस्तों थोड़ी सी बात आप यहां और जान लीजिए कि जो कैबिनेट है, देखिए कैबिनेट तो सरकार है, कैबिनेट क्या है मैं अब इस पर तो नहीं जाऊंगा, नहीं तो उसी में समय खत्म हो जाएगा। अब कैबिनेट ही सारे के सारे निर्णय लेती है। आपने देखा ना कि कैबिनेट ने निर्णय ले लिए कि 11 कंपनियों के शेयर्स लिस्ट की लिस्टिंग होगी, तो कैबिनेट सरकार है। अब सरकार के कामों, सरकार पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है। अब बटने चोरेले कि अब सारी चीजें फिर कैबिनेट ही क्यों करे, तो अपने काम को आसान बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि अपनी समितियों के भी फिर उप समितियां बना देते हैं, या अपने कैबिनेट अपने आप में कमेटी फिर वो समितियां बना देती, कमेटीज बना देती हैं कि ठीक है भाई चलिए आप इसको इस काम को कर लीजिए, आप इस काम को कर लीजिए, आप इस काम को कर लीजिए। तो जो चार प्रमुख काम होते हैं उन चार प्रमुख कामों की समितियां बनी हुई हैं। और याद रखिए कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, इन समितियों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा गया है कि ऐसी बनाई जाएंगी। एक कैबिनेट ने अपनी अपनी सुविधा के लिए आप कह लीजिए कि बनाई है। तो दोस्तों बहुत सीधी सी बात है कि चार स्थायी समितियां हैं जो राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेती है, राजनीतिक संबंधों की समिति है, आर्थिक मामलों पर जो निर्णय लेती है आर्थिक मामलों संबंधी समिति। आपने देखा कि अब ये सार्वजनिक उपक्रम तो आर्थिक मामलों का मामला है, तो इस पर आर्थिक संबंधी मामलों संबंधी समिति निर्णय लेगी। इसके बाद एक नियुक्ति समिति होती है जो सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स के जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी की जो अपॉइंटमेंट होती है ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एबव लेवल की, तो सारे के सारी नियुक्तियां समिति ही करती है, वो क्लियरेंस करती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ उसका नाम भी है ACP। इसके बाद चौथा होता है संसदीय मामलों संबंधी समिति जो संसद में जो कुछ भी हो रहा है और होना है इन सब के बारे में निर्णय लेती है। यहां मैं आपको प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। इसमें शुरू की जो तीन समितियां हैं कौन कौन सी, राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं। लेकिन जो चौथी समिति होती है जो संसदीय मामलों संबंधी समिति होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें जो सबसे पावरफुल जो समिति है वो बटने चुरे की राजनीतिक मामलों की समिति है, सबसे पावरफुल होती है और इसे कुछ लोग सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो दोस्तों एक बार यदि आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाती, राइट। अब देखिए कि लिस्टिंग होगी का मतलब है कि अब इस हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है जो पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं उन कंपनियों के शेयरों की खरीदी बिक्री होगी। सेबी का नाम आपने सुना है, सेबी में अप्लाई करते हैं और सेबी फिर सारे फॉर्मेलिटीज को देखने के बाद अनुमति देती है और फिर उस कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। यह है लिस्टिंग। अभी उनके शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं हो रही है, राइट। अब देखिए कि लिस्टिंग का अर्थ क्लियर हो जाने के बाद अब सरकार ने कहा कि 25% वो उसके शेयर बेचेगी। अभी तक जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उस पर उसके पूरे के पूरे जो शेयर है उस पर सरकार का नियंत्रण है, मतलब 100% जो पूंजी लगी और सरल शब्दों में कहें तो वो सरकार की लगी है, तो सरकार की पूंजी लगी है तो उसमें से वो कह रहे कि नहीं 25% वो अब पब्लिक को बेच देगी, यानी कि एक तो सरकार को उतना पैसा कैश मिल जाएगा, दूसरा यह कि इस इन इनमें पब्लिक की भागीदारी होने के कारण अब जो हमारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि पब्लिक उनको कहीं ना कहीं तो नियंत्रित करेगी ना। आप जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, पब्लिक प्रश्न पूछेगी, इस तरह के बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ है। और याद रखिए, पब्लिक का मतलब ये नहीं कि आपने मैंने ही लगाया, हम तो लगाएंगे ही। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बैंक्स हैं, ये भी शेयर खरीदती हैं, ये भी पैसा लगाती हैं। और जिनका ज्यादा पैसा लगता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, तो एक तरह से यूं कह लीजिए कि वो उस कंपनी के बारे में निगरानी करने लगती है कि भैया नुकसान ना हो रहा हो। तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगी, इससे ये फायदा होता है। फोर्थ पॉइंट था दोस्तों कि कर्मचारियों के लिए, कर्मियों के लिए आरक्षण। अब होता यह है कि चूंकि उसमें इतने साल से लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी को उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, यहां तक पहुंचाया है, तो उनके लिए कहते हैं कि अगर कोई कर्मचारी उसके शेयर खरीदना चाहता है तो वो उनके लिए कन्फर्म होगा, उतने शेयर वो खरीद सकता है, इससे उनको फायदा मिलता है। अगर वो 5-10 साल तक उस शेयर को रखेगा, पहली बात तो उसके जो दाम बढ़ेंगे उसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। दूसरा, कर्मचारियों को यह भी प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अब उसके भागीदारी बन गए हैं, अब उस कंपनी के वो साझेदार बन गए हैं ना, शेयर होल्डर बन गए हैं, तो कंपनी में वो अच्छा से अच्छा काम करेंगे ताकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो उससे कंपनी को भी फायदा होगा, कर्मचारियों को भी फायदा होगा। तो उसके कुछ शेयर्स कर्मियों के लिए आरक्षित रख दिए गए हैं। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट्स थे और इन 4 पॉइंट्स को लेकर के मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बताई है। हालांकि वक्त नहीं है, नहीं तो इस पर तो पूरा का पूरा 45 मिनट का एक लेक्चर ही हो सकता है, लेकिन उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप या न सोचें कि जो बात बताई जानी चाहिए थी उसमें से कोई कटौती की गई है। हाँ, अब एक्सप्लेन करने की तो कोई सीमा नहीं होती है। तो मित्रों, आज के न्यूज में बस इतना ही। जहां तक न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके डिटेल में जाने की जरूरत मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुजीत कुमार को। बेहतर होता कि यदि उन्होंने लिखा होता कि वो कहां से हैं। मैंने मित्रों आप लोगों से अनुरोध किया है 2-3 बार, तो मैं अभी अभी कर चुका हूं कि आप लोग जब ईमेल लिखते हैं तो लिखें कि आप किस स्थान से हैं, किस राज्य से हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप लोगों की आदत में वो चीज, ज्यादातर लोगों की आदत में आ चुका है कि हम अपना स्थान भी नहीं लिखेंगे, अपना स्टेट भी नहीं लिखेंगे। तो सुजीत कुमार ने भी यही किया है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूं कि वो कहां से हैं, लेकिन अच्छा काम उन्होंने ये किया है, बताया कि वहां एक लाइब्रेरी है जहां 13 स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, और वहां उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को एएफई के बारे में बताया, .com के बारे में बताया, और उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है और अब उनकी आदत में शामिल हो गया, वो लगातार सुन रहे हैं। तो सुजीत, इसके लिए मैं एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, एक मेल है मनीषा पाल का, इन्होंने भी नहीं लिखा है कि कहां से हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैंने काम को प्यार किए जाने से संबंधित जो लाइफ मैनेजमेंट दिया था उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उन पर हुआ है और उसको उन्होंने फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। क्या शुरू किया है इसे बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। तो मनीषा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच पूछिए तो मित्रों, आप सुनिए, कितनी भी बड़ी बड़ी चीजें सुन लीजिए, होगा कुछ नहीं तब तक जब तक कि आप उसको करेंगे नहीं। अगर सुनने से ही सब कुछ होता तो फिर बात ही खत्म हो गई थी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनीषा ने उस दिशा में कदम उठाया है तो इससे डेफिनेटली आत्मसंतोष तो मिलता ही है। तो मनीषा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मित्रों, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स अखिलेश यादव और आशीष बंसल। अखिलेश यादव BHU के हैं और आशीष बंसल हापुड़ उत्तर प्रदेश के हैं। इन दोनों ने दो इंटरव्यू भेजे हैं। अखिलेश यादव ने एक स्टूडेंट का भेजा है और बिल्कुल वही इंटरव्यू ज्यों का त्यों आशीष बंसल ने भी भेजा है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं अवेलेबल होगा, तो दोनों मित्रों ने भेज दिया है। तो इसके लिए मैं अखिलेश और आशीष के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। आशीष बंसल ने उसी के साथ ही एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू भेजा है जो 6 अप्रैल को हुआ है। उसके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैंने सोचा था कि यदि आज वक्त मिला तो मैं वो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि क्या उनसे पूछा गया, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, मैंने वायदा किया है कि मैं आपको बताऊंगा और इस वायदे को मैं पूरा करूंगा। आज चूंकि वक्त नहीं है और मैं जल्दी में निपटाना नहीं चाहता, तो दोस्तों इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो आशीष, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनीश अली, लता शर्मा, माधव सिंह शेरघाटी गया बिहार से, अभिनव कुमार चौधरी, रजनी शर्मा, अभिषेक सोनी, वंदना सारमल पठानकोट पंजाब से, अमर मंडोल कत्यानी वेस्ट बंगाल से, शाहिद खान, अमित कुमार और बबलू गोविंद वाले हैदराबाद तेलंगाना से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन समाप्त करने से पहले एक छोटी सी सूचना है, और वो ये कि कल 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, साथ ही गुड फ्राइडे भी है। तो पहले गुड फ्राइडे की मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धांजलि आप सबकी ओर से, एकेडमी की टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से अर्पित करता हूं। तो मित्रों, कल 14 तारीख की छुट्टी है, इसके बाद सैटरडे और संडे है, यानी कि 3 दिनों तक यह डेली ऑडियो लेक्चर आपको अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जो फ्राइडे और सैटरडे का जो क्रम होता है, जो प्रेस क्लिपिंग्स होती हैं और जो दूसरी सामग्रियां आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, वो आपको एज इट इज मिलती रहेगी। यानी कि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस स्टूडेंट को भेजा जाएगा, जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं, आपको कुरुक्षेत्र योजना के आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, वीकली क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगे, वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे। तो मित्रों, अब सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। आप सबकी छुट्टी के ये 3 दिन बहुत सुखद हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।